आज बहुत से उत्सव है। विष्णुप्रिया देवी के आविर्भाव श्री राधा रघुनंदन ठाकुर, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और पुंडरिक विद्यानिधि और विश्वनाथ कविदास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की तिरुभाव तिथि है। बहुत सारे फेस्टिवल एक ही दिन में है। हम थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। तो बंगाल मुर्शिदाबाद देवग्राम नाम में उन्हें 1586 शक में उनके जन्म हुआ। तो बचपन से उन्होंने बहुत विरक्ति थे और पहले वो देवग्राम उस गांव में उन्होंने पढ़ाई किया। व्याकरण आदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने चाहा कि और ज्यादा शिक्षा लेने के लिए सौदाहाबाद गए मुर्शिदाबाद में ही। वहां से उन्होंने वहां पे रहकर पढ़ाई किया और राधारमन चक्रवर्ती से उन्होंने दीक्षा लिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर की परंपरा से है नरोत्तम दास ठाकुर और उनके जो शिष्य है प्रधान शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती, इसके बाद रामकृष्ण चक्रवर्ती और उनके शिष्य है राधारमन चक्रवर्ती, उनसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पर दीक्षा लिए और वहां पे रहकर उन्होंने वो समय शास्त्र आदि बहुत ध्यान से अध्ययन करने लगे और मन उनमें उनका पूरा रम गया। और वो बचपन से पहले क्या होता था, बचपन से लोगों को सात बच्चे को शादी दे देते थे। बचपन से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के शादी हो गए थे लेकिन उनके संसार में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो इस कुछ पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वृंदावन आकर उन्हें राधा कुंड जो कृष्णदास कविदास गोस्वामी के शिष्य थे मुकुंद कविदास उनके साथ रहते थे और कृष्ण चर्चा करते थे। तो वृंदावन रहने लगे तो उनके जो गुरुजी है राधारमन चक्रवर्ती जी, उनके घर वाले ससुराल वाले सारे परेशान कर रहे थे कि वो कहा गया बाबा जी उनको बुला के लाओ। तो राधारमन जी ने उनको बुलाने के लिए पत्र भेज दिया। चक्रवर्ती बाद गए सौदाहाबाद अपने गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने बहुत समझाया कम से कम एक बार तो जाओ अपने घर। तो बहुत समझाने के बाद उन्होंने घर आए तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बहुत अच्छा से सज्जा दी, जो बिस्तर है सोने का पालन वो बहुत अच्छा से बिस्तर सजाए जो हमारे पति देव आज आने वाले हैं। लेकिन चक्रवर्ती पास जब गए जाने के बाद उनका तो बिल्कुल मन नहीं था। और जाने के बाद वो बात करते करते वो जो माता जी थी वो तुरंत उनकी जो पत्नी है वो सो गई, नींद आ गया, इतना नींद आया कि रात भर हर जागे नहीं। और उनको उनका बात था कि मैं एक ही रात रुकूंगा घर। तो सुबह सुबह फिर देखे सुबह सुबह वहां से विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने गुरु जी के पास आ गए। फिर भी घर वाले बहुत परेशान और बहुत उनको गुरु जी से बताए लेकिन उन्होंने दोबारा और कहीं नहीं गया। और उनके जो गुरु जी है वो चिंता करते रहे मैं उनको भेजा उनको कुछ ना हो जाए, तो गुरु जी भी सोचते रहे कैसे उसका कल्याण हो। और उनके मन तो पूरा संसार में बिल्कुल नहीं था, उदास था संसार से, हमेशा कृष्ण में लगा हुआ था। तब वहां पे रहकर उन्होंने भागवत की टीका अपने गुरु जी के पास सौदाहाबाद रह के कर रहे थे। एक दिन की ऐसी घटना हुआ, उन्होंने धूप में लिख रहा था बैठे बैठे एक तालाब एक कुंड के पास बैठे बैठे, तो सूर्योदय ने तुरंत बादल हो गया वहां पे छाया हो गया और कुछ समय बहुत बारिश हो गया, बारिश हो रहा है। बारिश में जहां चक्रवर्ती पास बैठ के लिख रहे हैं वहां पे कोई बारिश नहीं, बूंद नहीं, एक बूंद भी बारिश नहीं गिर रहा है। चारों ओर से पूरा बहुत घनघोर बारिश हो रहे हैं। और ये वो गांव की जो जमींदार है वो जा रहे थे घोड़े में बैठे थे लेकिन देखा वो देखकर पूरा ये मिराकल है, मैजिक है, क्या है वो? चारों ओर बारिश हो रहा है, इतना घनघोर बारिश हो, वहां पे एक बूंद भी बारिश नहीं कर, और बारिश हो रहा है इतना टीका लिखने, भागवत की टीका लिखने में मन इनका इतना लगा हुआ था, इतना लगा हुआ था, बारिश हुआ उनका पता भी नहीं चक्रवर्ती पाद जी को। इसी प्रकार कुछ दिन रहने के बाद फिर चक्रवर्ती पाद ने वृंदावन आ गए। वृंदावन के राधा कुंड में उधर रहे, और रहने के बाद इसी समय एक बार उन्होंने जो गायत्री मंत्र है उनका अर्थ समाज में 24.5 है, गिनने में आप गिनेंगे तो 25-26 अक्षर है, लेकिन उनके 24.5 अक्षर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है। तो उन्होंने उनको अर्ध अक्षर, आधा अक्षर कौन सा उनको समाज में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा जब आप मंत्र ही नहीं समझ पा रहा, देखिए एक एक बात को आप लोग जो गायत्री मंत्र जपते कितना सीरियस होना चाहिए। बोला जब मंत्र का अर्थ ही नहीं समझ पा रहा हो, तो मंत्र का जो इष्ट जिसको हम साधना कर रहे, जिसको प्राप्त करने के लिए मंत्र जप कर रहे, उनको कैसे पाएंगे? इसलिए उन्होंने बोला मंत्र अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो, और मंत्र देवता भी नहीं मिलेगा, ठाकुर जी मिलने वाला नहीं है, मंत्र नहीं समझेंगे तो। इसलिए उन्होंने सोचा क्या, बहुत प्रयास किया, बहुत लोग से पूछा, बहुत सारे बहुत बड़े पंडित थे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, फिर भी बहुत ये जीव गोस्वामी का हरिनाम अमृत व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, सारे ग्रंथों को देखा, उन्होंने अर्धाक्षर निर्णय नहीं कर पाया। हिसाब लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक ही बैठते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये अपने शरीर छोड़ देना है। इसलिए भक्ति करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कि बस हम खुलाम खुलाम मन में कोई ये नहीं, ढिलाम ढिलाम, ऐसे नहीं काम चलता है। एक शब्द, एक आधा शब्द का निर्णय नहीं कर पाए, जीवन बाजी लगा दिया कि अर्थ नहीं समझ पाऊंगा मैं, अपने राधा गण के तट पे हम अपना प्राण विसर्जन देंगे बिना खाए पिए नाम जप करते करते। तब जैसे ऐसे सुबह से लगा उन्होंने, रात 12 बजे उनको थोड़ा तंद्र आ गया, सब करते हैं, राधा रानी जी स्वयं आई हैं, उनका नाम जो हुआ हरिवल्लभ हुआ था, विश्वनाथ और हरिवल्लभ, उनका दीक्षित नाम हरिवल्लभ। राधा रानी के बताई, ए विश्वनाथ, ए हरिवल्लभ, तू क्या सोच रहा है? कृष्णदास कवि, एक बार उनका मन में यह भी संशय हुआ, कृष्णदास कविराज से गलती तो नहीं लिखा, तो क्या समझते हैं कृष्णदास कविराज, ये मेरा सहचरी है, वो गलत कर सकता है, उसमें कोई भूल नहीं है। तो उन्होंने बता दिया कि वर्ण आगम भाष्य एक किताब है, उसके द्वारा अर्ध अक्षर कौन सा अक्षर आगे और कौन सा अक्षर पीछे होने से उसके बीज वाला जो अक्षर है उसका अर्धा अक्षर बनाया जाएगा। तो वो विश्वनाथ चक्र राधा ने स्वयं आके उनको बता दिए, और उनका तंद्रा भी टूट गया, बहुत रोने लगे, और राधा रानी को दोबारा दर्शन करने के लिए प्रयास किया और कहा, लेकिन उसको अर्थ मिल गए, तब तो बहुत प्रसन्न हो गए। इस समय और भी श्रीनिवास आचार्य की एक बेटी थी जिनके नाम हेमलता, बहुत प्रसिद्ध वैष्णवी हुई, और उनके एक शिष्य थे रूप कविराज। रूप कविराज थोड़ा मतभेद हो गया तो हेमलता जी ने उनको त्याग दिया। तब रूप कविराज वृंदावन आए, वृंदावन आके उन्होंने अलग एक संप्रदाय, ओतिवारी संप्रदाय बनाए, और उन्होंने लिखे कि कोई भी भक्ति संप्रदाय की कोई आचार्य बनना है गौड़ीय संप्रदाय, तो विरक्ति होना, त्यागी होना चाहिए, कोई गृहस्थ हो, कोई माताजी हो, ये आचार्य नहीं। हेमलता स्वयं एक लेडीज थी तो वो आचार्य थी, लेकिन ये कोई आचार्य नहीं बन सकते, उन्होंने नया नया सिद्धांत बनाया। और इसके बाद जो भी हमारा साधन पद्धति है इसको में भी बदल दिया, बोला श्रवण कीर्तन का अलावा केवल स्मरण करना चाहिए, लीला की स्मरण करना है, और साधन जो साधन भक्ति है रागन, केवल रागन रोग का आचरण करना, साधन भक्ति का कोई स्थान नहीं है, ऐसे कुछ उन्होंने सिद्धांत बनाया। तो इसमें एक आपत फैल रहा था, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उनसे तर्क किए, शास्त्र युक्ति किया, इसके बाद उनको जो हमारा गोस्वामी लोग जो मार्ग देके गया है इसको ही स्थापित कर दिया उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने। और ये स्वकिया और परोकिया भाव लेकर भी वैष्णव समाज में एक बातें चल रहे थे। तो गोस्वामी लोग जो परोकिया भाव की स्थापना किया है उनको भी ये लोग खंडन कर रहे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भागवत टीका के द्वारा, रागात्मक चंद्रिका के द्वारा स्थापित किया कि नहीं, जो गोस्वामी लोग राग जो परोकिया भाव स्थापित किया यही सही है, ये सबसे तीव्र भक्ति के लिए मन जो अपने स्वकीय और परोकिया भाव में, अब लोग हर कोई जान सकते हैं कि इसमें परोकीय भाव जो उसमें मन ज्यादा एकाग्र होते हैं, जो लगते हैं जैसे राधा रानी और कृष्ण में विषय है, दूर है। जब पास में रहेंगे राधा और कृष्ण इतना सोचेंगे नहीं क्योंकि पास में तो है ही है, लेकिन जब मथुरा चले गए तो हमेशा सोचते रहते, हमेशा रोती थी। इसलिए जो विरह भाव है उनके जो भाव की जो उद्गार है, पुकार है, वो बहुत गार होते हैं, इसके खंडित कर दिए थे। तो उन्होंने रागात्मक चंद्रिका एक किताब है विश्वनाथ चक्रवर्ती के लिखा हुआ, उन्होंने लिखा और भागवतम टीका में भी उन्होंने जो राग भक्ति के सर्वोच्चता मार्ग उन्होंने बताए हैं। तो ये लोग जो स्वकिया अभी भी जो निम्बर की वैष्णव है, ये लोग स्वकिया भाव में है। उन लोग का कहना है कि राधा और कृष्ण को भी अलग हो ही नहीं सकता है, तत्व दृष्टि में ऐसे है, लेकिन नरलीला में लीला की ओति गुरता ओति अनुराग ये कर लिख लिए परोकीय भाव चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया है। इसमें जो चिंतन है, इसमें जो गाढ़ता है वो बहुत ज्यादा होता है, पास में रहने से जो दूर रहने से जो होते हैं उसे पास में रहने से वो भाव नहीं आ पाते हैं, इतना चिंतन नहीं हो पाता है। तो जो जब उनको हरा दिया तो उन्होंने क्रोधित हो गया, उन लोग ने सोचा कि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को मार दिया जाए, उनको मार दिया जाए। तब ऐसे जब सोचे तो उन्होंने हर दिन परिक्रमा करते थे वृंदावन, तो सुबह सुबह परिक्रमा करने के लिए निकाल पड़े। तब कोई एक पहले वृंदावन ऐसे नहीं था, जंगल जंगल थे, इतना बिल्डिंग जो है अभी भी दिखाई नहीं देता क्योंकि चारों ओर से बिल्डिंग है कोई गली गली बन गया बिल्कुल। तब भी ऐसे इससे पूरा जंगल थे, कुंज जो थे, तो कुंज में प्रवेश कर दिया तो वो लोग मारने के लिए तैयार हो गए। तो देखा विष्णु चक्रवर्ती है नहीं, कोई बच्चिया दो चार छोटे छोटे लड़कियां वो फूल चयन कर रही थी। तो वो जो मारने वाले थे वो लोग जाके पूछा, अरे बच्चे लोग तुम लोग देखे हैं कि कोई, ये बाबा जी एक विश्वनाथ चक्रवर्ती एक बाबा जी अभी जा रहे थे, अब बाबा जी को देखा? बोले नहीं। तो आप लोग कौन हो? बोले हम तो, हमारा स्वामिनी है राधा रानी जी जावट में है अपने ससुराल में, तो हम लोग भेज दिए फूल चयन करने के लिए, हम फूल चयन कर रही है। इतना बोल के ये तो दिव्य स्वरूप में थे विश्वनाथ चक्रवर्ती, अपने स्वरूप में आ गए थे। और भी दूसरा भी जो उनके साथ में दो चार सखी और थी, तो वो दिव्य पुरुष जैसे, तो उनसे कुछ पूछने के लिए और ये आकर्षक हो गए ये लोग, तो इन लोग जो कुछ बात करने के गए तो ये लोग अंतर्धान हो गए। और थोड़ा देर दूर जाके देखते वो विश्वनाथ चक्रवर्ती फिर दोबारा जा रहे हैं, तो जाके उन लोग समझ गए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उनके जाके चरण कमल में गिर पड़े और हम लोग को बहुत गलती हो गई, आप परम वैष्णव है, हम लोग को क्षमा कर दीजिए। तीसरी प्रकार उन्होंने बाद में बहुत सारी किताब उन्होंने लिखा है, भक्तेश्वर सिंधु की बिंदु, उज्जल निर्मल की टीका, भागवतम, गीता में गीता की टीका, ऐसे रागात्मक चंद्रिका, कृष्ण भवामृत महाकाव्य, कृष्ण भवामृत महाकाव्य ऐसे है ठाकुर जी की दिनचर्या कैसे, सुबह उठकर ठाकुर जी कैसे, राधा रानी ठाकुर जी कब मिलन होते हैं, क्या क्या करते हैं, कब नहाते हैं, क्या खाते हैं, कौन कौन सा कुंजों में कहाँ पे, हाँ पे, हर दिन की 24 घंटे की रूटीन है ठाकुर जी की, कहाँ पे कौन लीला करते हैं, हर दिन जो नित्य लीला है वो पूरा कृष्ण भवनामृत में उन्होंने लिखे हैं। ये कृष्ण भवनामृत है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत, इसमें ठाकुर जी का 24 घंटाओं के लीला लिखे हैं। इसलिए जो बहुत बड़े जो भक्त हुए हैं वो लोग नाम जप के साथ में उस लीला के स्मरण करते हैं। जो अभी जो टाइम है अलग अलग मुहूर्त में कहाँ पे कौन अभी क्या कर रहा है, अभी ठाकुर जी गाय दोहन कर रहा है, इसके बाद गाय दोहन करके घर आएंगे, इसके बाद स्नान करेंगे, अगर राधा रानी स्नान करके जावर से आ जाती है नंदगांव में, वो ठाकुर जी के लिए कुकिंग करते हैं, अच्छे से व्यंजन बनाते हैं, ठाकुर जी खाते हैं, इसके बाद गाय चराने जाते हैं, इसी प्रकार सारा दिन भर के फिर राधा रानी लोग स्नान घर जावर जाके फिर सूर्य पूजा के लिए आती हैं, इस प्रकार के कहाँ पर मिलान होते हैं, राधा कंडो में कब मिलान होते हैं, इसी प्रकार सारे दिन भर 24 घंटे की लीला इस कृष्ण भवनामृत महाकाव्य में लिखे हैं। और माधुर्य कादम्बिनी, ऐश्वर्य कादम्बिनी, इसे बहुत सारे किताब उन्होंने, बहुत ही सुंदर सुंदर किताब उन्होंने लिखे हैं। इसी प्रकार चक्रतिपात की आज जो वसंत पंचमी है, इस पंचमी तिथि को उन्होंने अपने छोड़कर अपने दिव्य लीला में प्रवेश किया है। और वसंत पंचमी है आज से, इधर तो कुछ नहीं होता, बंगाल में बहुत सरस्वती पूजा होते हैं, सरस्वती पूजा विग्रह बना बना के सरस्वती देवी की, हर गली गली में, हर जगह, हर स्कूल कॉलेज, हर गली गली में सरस्वती पूजा होते हैं। और वृंदावन में जैसे नरलीला में ठंडे थे इसी समय रासलीला आदि ज्यादा नहीं होते हैं, तो आज से प्रारंभ होते हैं फिर दोबारा रासलीला आदि, इसलिए वसंत पंचमी है, आज से शुरुआत होते हैं ये ब्रज में रासलीला। और बताते हैं कि आज से होली के भी प्रारंभ होते हैं, 40-42 दिन, अभी तक 40 दिन लगभग है होली पूर्णिमा को, तो आज से शुरू होते हैं होली खेलना। आनंद वृंदावन से में बताते हैं कि प्राय लगभग के ठाकुर जी होली खेलते हैं सुखियों के साथ, ऐसे कोई डेट नहीं है कि आज ही खेलेंगे, केवल पूर्णिमा के दिन। तो इस वसंत पंचमी वसंत रास है, आज जो है हर कोई पीला ड्रेस, पीला सजावट भी जो भी हुआ है, पीला सब कुछ हुआ है, रसमलाई रसगुल्ला जो भी व्यंजन बनाएंगे भी पीला सब बना देते हैं आज। तो इसके बाद विष्णु प्रिया देवी की आविर्भाव तिथि है। विष्णु प्रिया देवी कौन जानते हैं आप लोग? विष्णु प्रिया देवी चैतन्य महाप्रभु दो शादी किए थे, पहले लक्ष्मी प्रिया, दोबारा वो अपने चले जाने के बाद नित्य लीला में जाने के बाद वो दूसरी है विष्णु प्रिया देवी। तो बताते हैं विष्णु प्रिया देवी सनातन मिश्र की पुत्री थी और बचपन से ही 2-3 बार गंगा में नहाते थे, अपने माता पिता को बहुत श्रद्धा करते थे और विष्णु पूजा करते थे। और सती माता को भी जब गंगा स्नान के लिए मिलते थे तो सती माता को भी प्रणाम करते थे, वो भी सती माता भी बहुत आशीर्वाद करती, जैसे आपको योग्य पति मिले। इसी प्रकार महाप्रभु की जब दूसरी पत्नी या पहले पत्नी लक्ष्मी प्रिया का अंतर्धान हो गया तो इसके कुछ दिन बाद में काशी पंडित को भेजकर सची माता ने निमाय के सदन के शादी हुए। और बुद्धिमंत खान बहुत ही विस्तार रूप से, बहुत ही विशाल रूप से, राजा के जैसे ब्राह्मण है, उनके कोई धन महापुरुष के पास थे नहीं, बाहरी रूप से कोई धन नहीं था, सर्व ऐश्वर्य का मालिक है लेकिन एक ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, तो ऐसे बाहरी रूप से ज्यादा कोई धन उनको नहीं दिखाई दिया। तो बुद्धिमंत खान ने शादी की बहुत ही विशाल आयोजन किए थे उनकी शादी, और दोनों को दर्शन करके लोग सोचते थे ये कौन है, ये शिव पार्वती है या राम लक्ष्मण है या राधा कृष्ण है, इस प्रकार जुगल जोड़ी थे। तो हमेशा घर आके विष्णुप्रिय देवी सची माता महाप्रभु की सेवा करते थे। इसी प्रकार महाप्रभु कुछ दिन में ही सन्यास लेने की तैयारी कर दिए थे महाप्रभु। इन्हें सुने महाप्रभु, एक बार विष्णुप्रिया देवी ने एकांत में पूछे, प्रभु आप, मैं सुना सारे लोक मुख से मैं सुन रहा हूं कि आप सन्यास लेंगे। तो वो बहुत रोई, तो महाप्रभु ने बताया कि आप, महाप्रभु ने विष्णु देवी को बताया कि आप ठाकुर जी जो है ये हमारा कृष्ण है, ये हमारा चिरपति है, इनको सेवा करनी चाहिए, नरपति को क्या सेवा करना है और आपने इनके लिए इतना क्यों दुखी होना है, कृष्ण भजन करो, कृष्ण सबके पति है। तो विष्णुप्रिय तो जानती थी स्वयं कृष्ण है, तो उन्होंने बोला हमको छल कर रहे हैं, ये है आप ही स्वयं अपना मेरा विष्णु आप ही है, हमारा मेरा कृष्ण आप ही है। तो बताने के बाद महाप्रभु को चतुर्भुज रूप भी दिखाए और सती माता जब सुने तो महाप्रभु कुछ दिन शांत रहा। फिर संन्यास लेने के एक दिन दो दिन पहले सची माता नित्यानंद प्रभु और दो चार लोगों को बताए थे, उन्होंने संन्यास लेने का तैयार हो गया और विष्णु प्रिया देवी माया से वो सो गई और महाप्रभु यहां से निकाल के चले गए। तो जब बिस्तर में विष्णु प्रिया देवी देखे महाप्रभु चले जाने के बाद, हाथ लगा के देखे, महाप्रभु है नहीं। तुरंत चिल्ला के, एकदम बिल्कुल चिल्ला के उठे और सची माता और इतना बिलाप करने लगे, इतना बिलाप करने लगे, इतना चिल्लाने लगे। और महाप्रभु अपने जो पायल और माला सब कुछ रखे गया, महाप्रभु के माला अपने छाती में जब विष्णुप्रिया देवी ले लिए तो तुरंत माला सूख गया। इसमें विरह भाव में ऐसे रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे, तो गांव के सारे लोग आके रोने लगे, जितना भी भक्त थे बोला क्या आपत आ गया। इसी प्रकार विष्णुप्रिया की जो क्षण क्षण में मूर्छित हो जाती है, फिर चेतन पड़ने से फिर दोबारा मूर्छित हो जाती है। आप लोग सोच ही सकते हैं महाप्रभु जैसे जिसके पति थे और वो चले गए तो क्या दशा होगा, वही वही विष्णुप्रिय देवी जान सकते हैं क्या दशा उनके हो गई। तो इसके बाद तो चले जाने के बाद तो और क्या है, महाप्रभु जैसे सची माता भी मूर्छित हो जाती बार बार और विष्णुप्रिया देवी भी, सारे नदिया के भक्त लोग ने बताया कि हम लोग और नहीं रहेंगे, हम लोग अपने घर में आग लगा के चला जाऊंगा सब। तब नित्यानंद प्रभु बताए नहीं आप, मैं महाप्रभु को लेके आऊंगा। लेकिन लेके आया, सबको दर्शन हुआ, लेकिन विष्णुप्रिया देवी को और दोबारा कभी दर्शन नहीं हुआ महाप्रभु जी को। वो संन्यास लेके शांतिपुर में 10 दिन तक रहे, बाद में दोबारा आए, लेकिन विष्णुप्रिया देवी का और दोबारा कभी महाप्रभु के इस रूप का दर्शन नहीं हुआ। इसके बाद महाप्रभु संन्यास लेके चले गए तो और विष्णुप्रिया देवी सची माता के बहुत बहुत सेवा करते थे। सुबह सुबह उठकर सची माता के साथ गंगा स्नान करके अपने कमरे में प्रवेश करती थी और दोबारा उनको कोई और दूसरे को कोई दर्शन नहीं होता था, कि अपने को इतना हतभागिनी मानती थी, कोई भी उनके कंठ की आवाज जोर से कोई दूसरे दोबारा कभी सुनाई नहीं दिया किसी को। और सची माता का बहुत सेवा करती थी और जब भी सेवा से अवसर मिलते थे तो उन्होंने हरिनाम जप करते थे, हमेशा बैठ कर हरिनाम, कभी हमेशा दोनों आंखों से पानी गिरते थे और हरिनाम जप करते थे। महापुरुष जी के एक चित्रपट बना लिए थे, उन चित्रपट में पूजा करते थे, सालग्राम को भी पानी चढ़ा के स्नान करा के केवल हरिनाम जप करते थे। इसी प्रकार दिन रात साधन में भजन में बिताते थे। आज सती माता को सेवा करने के बाद, सती माता प्रसाद पाने के बाद जो बचा हुआ पत्तल है, उस पत्तल में जो बचा हुआ था उसको थोड़ा प्रसाद लेके अपने जीवन धारण करती थी। इसी प्रकार बहुत समय बीतने के बाद सती माता जब अपने धाम में चली गई तो विष्णुप्रिया देवी अकेला रही और उनके कुछ दासियां थी, तब से उन्होंने जो चार दीवारी है वो बंद कर दिया, दरवाजा बंद। और विष्णुप्रिया देवी जैसे शशि माता के साथ गंगा स्नान के लिए जाती थी वो भी बंद हो गया। बिल्कुल चार दीवारी जो है, जैसे हमारा मंदिर है इसमें दरवाजे है, गेट है, ये गेट बंद कर दिया। दीवार के दो साइड में दो सीढ़ी रखे हैं, वो जो दासियां थी वो पानी और पानी आदि लाने के लिए कोई कार्य के लिए जाती है तो इधर प्रवेश करने के बाद वो सीढ़ी बाहर अंदर खींच के ले लेती है, कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं अंदर। और विष्णुप्रिया देवी वो चार दीवार से बाहर कभी नहीं बाहर जाती है। तो वो दासी लोग स्नान आदि के लिए पानी लेके आते थे और उसमें स्नान आदि करते थे, और एक केवल पुरुष जाते थे जो थे दामोदर पंडित। महाप्रभु को जब दोष देखने लगा, महाप्रभु को दोष नहीं, महाप्रभु में उनकी भी बहुत प्रथा दामोदर पंडित की, तो उन्होंने एक कथा, एक बार एक बच्चे, एक विधवा के एक बच्चे आके मिलते थे। दामोदर पंडित ने सोचा कि ये महाप्रभु की बदनाम हो जाएगा, एक विधवा है, उनके पति नहीं है, उसकी बच्चा मिलेगा तो लोग महाप्रभु की निंदा करेंगे, इसलिए महाप्रभु उनके बता दिया था कि गोसाई ऐसे ठीक नहीं है, आप कोई एक विधवा की बच्चे के साथ बात कर रहे हैं। तब महाप्रभु तो उनको कुछ बताया, बोला आप निरपेक्ष व्यक्ति है, भगवान को अब छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए संन्यास लेने के बाद महाप्रभु, और वो सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, दामोदर पंडित ब्रह्मचारी है, महाप्रभु सन्यासी है, ऐसे भी कोई नियम नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी को शिक्षा दे, ये मर्यादा का उल्लंघन है। तो इसके बाद भी उन्होंने ऐसे जब शिक्षा दिया तो उनको भेज दिया, बोला आप ही एक व्यक्ति हो, निरपेक्ष व्यक्ति है, और निरपेक्ष नहीं होने से धर्म का रक्षा नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी में आसक्त है, कोई वस्तु में आसक्ति है, वो सही निर्णय नहीं दे सकते हैं। इसलिए पहले जैसे राजा है, जैसे रामचंद्र भगवान सीता के अपवाद सुने तो सीता को भी जानते हैं कोई दोष नहीं है, फिर भी समाज जो लोगों का दृष्टि रामचंद्र के प्रति बहुत खराब हो रहे थे, इसलिए उन्होंने राजधर्म के लिए सीता को बनवास दे दिए। इसलिए जो राजा है, जो व्यक्ति है, वो धर्म के निर्णय वो लोग बिल्कुल निरपेक्ष होना है, कोई अपेक्षा रहेगा अशक्त मोहित हो जाएगा, वो सही निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए बोला आप एक निरपेक्ष व्यक्ति है, आप जाओ माँ की, माँ और विष्णुप्रिया की सेवा करने वाले देखने वाले कोई नहीं, मेरे इधर देखना जरूरत नहीं, आप उधर जाके देखो। तब से महाप्रभु का आज्ञा से वो भी पानी गंगा जल आदि भर के रखते थे, अंदर प्रवेश करते थे और दूसरा कोई नहीं जा सकता था। इसी प्रकार विष्णुप्रिया देवी ने एक स्नान करके शालग्राम को सेवा करने के बाद एक मिट्टी के पत्र होते हैं जैसे सड़ा बोलते हैं बंगाली में, ऐसे होते हैं, उसमें चावल दो प्रकार बंगाल में तो जा रहे होते हैं, अरुआ चावल और बैल वाला, ये चावल लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक चावल रखा, दूसरा लिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दूसरा रखा। एक एक करके ऐसे 3 बजे तक, सुबह से लेकर 3 बजे तक एक एक चावल, जो भी जितना चावल होते थे उसको पकाते थे 3 बजे के बाद, 9 घंटा के बाद, 9 घंटा भजन करने के बाद एक एक चावल में 9 घंटा भजन करने के बाद उसको पका के ठाकुर जी को ऑफरिंग करके वही प्रसाद लेते, वो भी बचा के रखते थे थोड़ा। ये उनकी कठोर भजन रीति है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं खाते थे, वो भी जितना चावल होता था जो भी उसे बचा के रखते थे थोड़ा। तो यही ऐसी उनकी भजन रीति है। और महाप्रभु जाने के बाद, सन्यास लेने के बाद, बहुत सारे बैरागी भक्त लोग महाप्रभु के जो घर उनके आसपास छोटी छोटी कुटिया बना के रहते थे, वो लोग भी बहुत तीव्र भजन करते थे। तीव्र भजन करके ये विष्णुप्रिया देवी जी ने इस भजन पूरा 9 घंटा तक भजन करने के बाद वो भोजन पका के भक्त ठाकुर जी को ऑफरिंग करके थोड़ा पाकर विष्णुप्रिया जी एक बार दर्शन देते थे लोगों को। तब दरवाजा खोला जाता था, एक दिन जो भी अनुरागी भक्ति है भक्त है उन लोग आके दर्शन करते थे। तो ऐसे दर्शन करते थे, एक ऐसे बना हुआ है, कपड़े से ढाका हुआ है, उनके शरीर की देख सकते हैं। तो जब वहां पे खड़े होती थी, उन्होंने आने के बाद दासी आके थोड़ा चरण दर्शन कराते थे। ऐसे है, पूरा ढका हुआ है, केवल चरण जहां पे है वहां थोड़ा खुला है और चारों ओर से कपड़े से ढका हुआ है। तो वहां पे दासी थोड़ा चरण कपड़े उठा देते थे, उस चरण दर्शन करते थे। वो दर्शन करके कि अनुरागी भक्त लोग एकदम दस जो नाखून है उससे पूरा एकदम चंद्र जैसे, दस चंद्र जैसे निकालते थे। तो देखकर भक्त लोग मूर्छित हो जाते थे। वहां पे पूरा समय दर्शन देने के बाद फिर वो कपड़े ढक देते थे और वो अंदर चले जाते। तो बचा हुआ जो थोड़ा प्रसाद है वो सबको बांट देते थे और वो लोग भी उसके बाद ही जो भक्त लोग थे आसपास कुटिया बना के, वो लोग भी इसके बाद विष्णुप्रिया देवी जी के चरण दर्शन के बाद ही पानी पीते थे या कुछ खाने के लिए जो महादेव गढ़ी जो भी लेते थे इसके बाद, मतलब 4 बजे 5 बजे कम से कम। इसके पहले वो अनुरागी भक्त लोग भी पानी भी नहीं पीते थे। तो इसके निष्कर्ष ऐसे है, भक्ति में कैसी कठोरता से, कैसे नियम निष्ठा से लोग अपने वस्तु को, लक्ष्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है। इसी प्रकार उन्होंने भजन करने लगे और तब बाद में सुना कि महाप्रभु कभी अपने लीला में, नर लीला से अपने दिव्य नित्य लीला में प्रवेश कर गए। इस खबर सुनने के बाद तो और भी मुर्शिद हो गई और वंशीवदन ठाकुर भी सेवा में रहते, कभी कभी रहते थे आसपास। तो उन्होंने दोनों को स्वप्न दिया, दिखाया, दोनों जैसे पागल जैसे हो गए थे। तो बताया जो मेरा जहां पे जन्म हुआ उस नीम वृक्ष से मेरा एक विग्रह बनाओ, वंशीवदन को बोला। तो वंशीवदन ठाकुर ने एक कारपेंटर को बुला के महाप्रभु जहां पे जन्म लिए थे जिसके लिए उनका नाम निमाई हुआ था, तो उस नीम वृक्ष से महाप्रभु के एक दिव्य विग्रह बनाए और विग्रह बोला ये मेरा विग्रह और मैं अलग नहीं हूं, एक ही हूं। तब से उस विग्रह की सेवा करते थे और जब विग्रह बना के विष्णुप्रिया देवी के सामने लाए तो देखकर तुरंत साक्षात मूर्छित हो गई और अपने प्राणनाथ समाज के उन्होंने हमेशा उनकी सेवा करते थे और हरिनाम करते थे। इसी प्रकार जो कुछ दिन बाद में जो उन्होंने उनका तिथि कब है ये तो पता नहीं है कि उनका कब अपने नित्य लीला में चले गई हैं। इस प्रकार विष्णुप्रिया देवी की ये है और उस धामेश्वर महाप्रभु अभी भी नवद्वीप में है, नवद्वीप में अभी भी उस धामेश्वर महाप्रभु को आप लोग दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर दिव्य विग्रह है, यहाँ पे है, कालना में है, जो महाप्रभु के कालना की जो विग्रह है महाप्रभु के रहते हुए उसी समय के विग्रह है और चापाहाटी में भी है गदाई गौरंग। तो ये जो महाप्रभु की विग्रह है ये साक्षात महाप्रभु है, आप लोग जिसको दर्शन करने के शक्ति है वो दर्शन कर सकते हैं। और वो विष्णुप्रिया की जो वंश परंपरा, उनके चाचा जी, उनके परिवार में और कोई नहीं थे, उनके जो चाचा जी उनके वंश परंपरा है उस परंपरा से भी सेवा होते हैं धामेश्वर महाप्रभु जी की और वो लोग अभी भी दामाद के रूप में मानते हैं और उनके गौर पूर्णिमा के दिन ज्यादा बड़े फेस्टिवल नहीं होते हैं वहां पे, ये बंगाल में होते हैं जमाई षष्ठी, मतलब दामाद को बुला के उस दिन बहुत अच्छे भाले बुरा बहुत अच्छे अच्छे खिलाते हैं। तो उसी दिन उस मंदिर में फेस्टिवल होगा धामेश्वर महाप्रभु में, सबसे ज्यादा विशाल फेस्टिवल होते हैं, सारे लोग आके उस दिन खिलाने के लिए, महाप्रभु के खिलाने के लिए सब लोग देते हैं और बहुत विशाल फेस्टिवल होते हैं जमाई षष्ठी के दिन। बेशक जेठ महीने में शब्द आते हैं रामायण सृष्टि, उस दिन धामेश्वर महाप्रभु की और उनके वंश परंपरा से अभी सेवा होते हैं। इसके बाद पुंडरिक विद्यानिधि, ये है विश्वभानु जी की अवतार है। बांग्लादेश में हाट हजारी, चट्टग्राम जिला हाट हजारी, इनके वहां पे एक कोस नहीं एक किलोमीटर दूर है हाट हजारी से, बहुत सुंदर रमणीय स्थान। अभी वो जगह जो प्लेस था उनकी जो भजन कुटीर है, भाग्य से हम लोग इस्कॉन को प्राप्त हो गया। इस्कॉन बहुत सुंदर एक मंदिर बनाया, बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे कोई बिल्डिंग थोड़ा सा छोटा इस्कॉन बनाया है, हम लोग पिछले साल भ्रमण के लिए गए थे, बहुत ही सुंदर, मैंने तो बहुत अच्छा लगा। इधर पीछे गांव है और जमीन भी बहुत है, बहुत बड़ा जमींदार थे, कुछ 20-30 एकड़ जमीन है, उसमें धान होते, जब हम लोग गए थे धान है, और बहुत सारे पेड़ पौधा, तालाब है, कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड बना के रखे हैं, बहुत ही सुंदर मनोरम स्थान है। वह अपन का जो भजन कुटीर, पुराना भजन कुटीर, वो भी थोड़ा थोड़ा संस्कार किया और पुराना स्वरूप में अभी तक है, वो देव स्थान अभी इस्कॉन में है। और आज के दिन वो मंदिर है, आज जो उनका वार्षिक उत्सव है, इनकी जन्मदिन में सबसे बड़ा मंदिर में फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो आज ही उनका जन्म हुए, और उनका पिताजी का नाम बानेश्वर और माता की नाम गंगा देवी थी। तो जन्म लेने के बाद उन्होंने बहुत भक्त हुए और बहुत बिरहाल जमींदार थे, लेकिन उनको देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि यह वैष्णव है, यह कोई विषय है। तो एक बार महापुरुष जी ने मायापुर में जब कीर्तन कर रहे थे, एक दिन चिल्ला रहे थे, पुंडरीक बाप, पुंडरीक बाप। तो महापुरुष के जो भक्त लोग थे उसमें से कोई पुंडरीक नहीं था, और महापुरुष किसको बुला रहे हैं तो किसी को पता नहीं चला। तो बाद में महापुरुष से पूछा कि क्या बाप, पुंडरीक बाप? बोला एक महावैष्णव आएंगे। तो उनका घर नवद्वीप में भी बनाया हुआ था, चट्टग्राम से उन्होंने, बहुत दूर है, लगभग बहुत दूर, वहां से उन्होंने आए। तो मुकुंद दत्तो और वासुदेव दत्तो, उन लोगों का भी उधर ही आसपास उनके घर थे, उनके साथ बहुत संगति थे, उनका भी अभी भजन कुटीर, पुराना भजन कुटीर अभी भी पुंडरीक विद्यानिधि के पुंडरीक धाम से पास में है। तो फिर वो मुकुंद जानता था पुंडरीक को, और जो गदाधर पंडित था, इनको वैष्णवों को दर्शन करने के लिए, वैष्णवों को सेवा करने के लिए उनका बहुत रुचि था। तो उन्होंने मुकुंद ले गया, अभी जाके देखा पुंडरीक विद्यानिधि बैठा हुआ है, एकदम सफेद दूध की फेन जैसे, ऐसे कपड़े, मखमल के कपड़े, बहुत ऊंचा सिंहासन में बैठा हुआ है और पान चिबा रहे हैं, और एक पीते हुक्का, हुक्का बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, दूर रहते हैं, एक पाइप जैसे पानी रहते हैं अंदर, सब पीते हैं। कौन जानता है हुक्का? किसी को हाथ ऊंचा किए जो जानते हैं, ब्रज में बहुत है, वो नशा टाइप का होता है, कुछ तमा ये डालते हैं, मक्का वगैरह डालते, एक ये होते हैं ऊपर आग लगाते हैं, एक डब्बे जैसे होंगे, इसमें पानी पानी होके स्मक धुआं आते हैं, हुक्का बोलते हैं इसको, वो पीते थे। और पान चिबा चिबा के रखने वाले, बहुत सुंदर एकदम पीतल से कटोरी सामने रखे हैं, एकदम साइड में तकिया बना के रखा है बहुत, और चामोर आदि ये कर रहे हैं, दुला रहे हैं। तो उसको देख कर मुकुंद तो बोला, वैष्णव तो शरीर में इतना आसक्त नहीं होते, ये शरीर मर शरीर है, मरने वाले है, सड़ा गला, इसके ऊपर इतना आसक्त। तो उनके संशय हो गया पुंडरीक विद्यानिधि को देखकर। तब उन्होंने जब संशय हुआ, मुकुंद समझ गया कि इनके मन में भ्रम हो गया, तो उन्होंने एक श्लोक बताया था गीताजी के, जो भगवान की कृपा के बारे में, अहो बोकी स्थानों काल कोट। इसको सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि कहां गए सब, तुरंत वहां के वहां से कूद पड़े और मिट्टी में लोट पड़ रखे, अपने वस्त्रों को फाड़ फोड़ दिया, कहां पे सब लात पात मार के जो भी सामने सजाया हुआ था सब कुछ कहा गया और अपने बाल को पकड़ रहे खींच रहे, एकदम भाव में विभोर हो गया, कृष्ण का अष्टसात्विक भाव आ गया। गदाधर ने सोचा ये मेरा अपराध हो गया, तो उन्होंने दीक्षा लेने सोचा, बताया कि मैं अपनी दीक्षा लेकर सेवा करने से ही वैष्णव अपराध से मुक्ति हो सकते हैं, तो उन्होंने दीक्षा लेने के लिए तय किया और दीक्षा दे दिया और सेवा किया। और उन्होंने गंगा जी को दिन में दर्शन नहीं करते थे, गंगा जी में उन्हें बहुत श्रद्धा था, उनका बहुत दुख था कि लोग मुंह कुल्ला करते हैं, वो शौच आदि करते हैं गंगा जल में, अपने केशों को संस्कार करके फेंकते हैं, इतना ये सब देखकर उनका सहन नहीं होता था, इसलिए दिन में गंगा जल गंगा दर्शन के लिए कभी नहीं जाते थे, रात को जाके प्रणाम करते थे, और कोई पूजा करना है कुछ भी ये करना है तो उन्होंने गंगा जल पी के उसके बाद ही करते थे, गंगा में बहुत श्रद्धा था। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी जाके भी जगन्नाथ को एक दिन जो ओरण षष्ठी है उस दिन वस्त्र पहनाया था, जो नया वस्त्र लाया मारुआ वस्त्र जो कड़क रहते हैं वैसे वस्त्र बिना धोए हुए पहना दिया, शुद्ध किया, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे थोड़ी ठाकुर की सेवा होना चाहिए, अच्छा जी इसको शुद्ध करना चाहिए उसके बाद ठाकुर जी को लगाना चाहिए। तो रात को जगन्नाथ और बलदेव आके दोनों गाले में दो थप्पड़ लगा के फुला दिया गाला पुनर्विद्या विद्या निधि को। तो बाद में भक्त लोग महापुरुष को पता चला, बोलता बहुत कृपा है, उन्होंने भी जानते हैं कि वो बहुत प्रसन्न हो गए थे कि ठाकुर जी स्वयं, ठाकुर जी किसी को दंड करते हैं या गुरु या वैष्णव के दंड देते हैं तो इसमें खुश होना चाहिए, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। जब चैतन्य महापुरुष कमलाकांत विश्वास को दंड दिया था तो बहुत दुखी था, अद्वैताचार्य ने बताया अरे तू इतना दुखी क्यों है, महापुरुष आपका दंड दिया मतलब आपका नजर में तो रखा है ना, और सुधारने चाहते हैं ना, तभी तो दंड देते हैं कोई। इसी प्रकार ठाकुर जी जब थप्पड़ लगाया दोनों को गाल फूल गया और भक्त लोग बहुत बहुत उनको प्रशंसा किया, महापुरुष भी बहुत बोला बहुत भाग्यवान है आप जगन्नाथ और बलराम आपको थप्पड़ लगा। इसी प्रकार विद्यानिधि एक महान वैष्णव हुए जो ऊपर से देखने में ठाट बाट में रहते लेकिन हमेशा प्रेमा भक्ति में रहते थे। तो हमारा कोई बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हम पुंडरिक विद्यानिधि, लेकिन वो ठीक है जब पुंडरिक विद्यानिधि का सब ठाट बाट हम पहनते हैं लेकिन वो जब श्लोक बोलते हैं वो भाव नहीं आ पाता है, मूर्छित हो जाके गिर पड़ना ये भाव नहीं आ पाता है। इनका गुण ऐसे है कि अच्छे ये में रहकर भी जैसे क्योंकि विषय की स्वभाव है कि वो विषय में तथापि विषय स्वभाव करे महावंद से ही कर्म करा जाते हाय भगवंद, तो ये विषय में रहकर भी वो अपने मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता था। एक्चुअली कोई कौन सा स्थिति में रहे ये बड़ी बात नहीं है, मन ठाकुर जी में लगे ये सबसे बड़ी बात है। कोई नीच हो, कोई ऊंचा हो, कोई अच्छे कपड़े पहना हो, इसके बात नहीं है, मन किसका कहां पे है, कोई विरक्ति हो उनका मन भगवान में नहीं है वो भी श्रेष्ठ नहीं है। कुल मिलाकर ठाकुर मन हमेशा ठाकुर जी में लगा रहना चाहिए। इसके बाद रघुनंदन ठाकुर है, वो मुकुंद खंडवासी है, खंडवासी जो है खंडदासी मुकुंददास श्री रघुनंदन श्री नरहरि यही मुख्य तीन जन चैतन्य चरितमृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लय में बताया है कि मुकुंददास श्री रघुनंदन और नरहरि ये मुख्य तीन है, और बहुत सारे वैष्णव हुए सुलोचन सुलोचन और रामचंद्र कविदास के पिता चिरंजीवी सेन पांच है, तो ये मुख्य तीन है। तो मुकुंद के पुत्र है रघुनंदन ठाकुर और मुकुंद का भाई नरहरि है, ये तीन एक परिवार से है। इसमें क्या विशेषता है, इनमें विशेषता ये है कि রঘুনন্দন করু কৃষ্ণরে সেবন, কৃষ্ণ সেবা বিনা নাহি ইহার অন্য নহে মন। উনকা কৃষ্ণ সেবা মে মন থা, কৃষ্ণ সেবাকে আলাবা উনকা ওর মন কহিঁ পে নেই থা। বচপন সে পিতাজি ক্যা করতে হয়, ছোটে বচ্চে হয় ও যাকে ঠাকুর জি কে পাশ যাকে দেখতে থে পিতাজি কেসে ক্যা কর রা হ্যায়, কেসে বহুত প্রেম সে দর্শন করতে থে। আর করতে থে কি কহাঁ পে আচ্ছা আচ্ছা ফুল মিলেগা, ও দিন কো ঘুম কে দেখতে থে, রাত কো সুবে সুবে যাকে প্রমুহূর্ত ও লেকে আতে থে। তুরন্ত নহা ধোয়া কর পিতাজি কে পাশ যাকে বেঠতে থে, কেসে পিতাজি সেবা করতে হ্যায়। তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলা তিনো কা তিন কার্য দিয়া, আখরি মে তিন কার্য দিয়া মহাপ্রভুজি নে। মুকুন্দ কে বলা আপ ধর্ম ধন উপার্জন করো, আর রঘুনন্দন করে কৃষ্ণর সেবন, কৃষ্ণ সেবা বিনা ইহার অন্য নহে মন। তো আর রঘুনন্দন কে কার্য দিয়ে পূজারি করনা, ঠাকুরজি কে সেবা করনা হ্যায়, সেবা করনে কে লিয়ে ঠাকুরজি কে সেবা করনে কে লিয়ে রঘুনন্দন কো সেবা দিয়া হ্যায়। আর নরহরি উনকে চাচা জি থে অঙ্কেল থে উনকো বতায়া কি আপ ও প্রচার করনা হ্যায়, এ তিন কার্য মহাপ্রভু তিনো কো দিয়া হ্যায়। তো উনে বচপন সে এসে একদিন পিতাজি যাব সেবা মে সেবা সেবা কে লগায়া, উনহে দূসরা কোই কার্য মে গা, ঠাকুরজি কো উনহে লড্ডু খিলা কে ছোড়া, স্নান আদি করায়া, বস্ত্র পহনায়া কি পূজা কিয়া, পূজা করার পর ভোগ লগায়া, বচ্চে কি বাল বুদ্ধি হ্যায়, সোচতে থে ঠাকুরজি তো খায়েঙ্গে, মাতাজি নে বতায়া, পিতাজি নে বতায়া, খিলানা আচ্ছা সে খিলানা, কাল ঠাকুরজি কো উসকো পহলে দিন বতায়া। তো উনহে ভোগ লগায়া, ঠাকুরজি নেই খাতা হ্যায়, বহু পরিশান হো গা। রঘুনন্দন বহু পরিশান হ্যায়, বহু বার বার বহু প্রেম সে বোলা কি আপ খাও খাও, নেই খানে সে মে আপকে পাশ নেই আউঙ্গা, আপকো ভজন নেই শুনাউঙ্গা, আপকে সাথ বাত নেই করুঙ্গা, কোন রহেগা, আপ অকেলা রহোগে, বহু ডরায়া। বোলা নেই তো মে পিতাজি কো বল দুঙ্গা, আপ নেই খাওগে, পিতাজি কো বল দুঙ্গা। সে জানছে যে তোমারা ঠাকুর তোমারা হাত সেই খাতা, মেরে হাত সে খাতে নেই হ্যায়, ইতনে বার ভি নেই খায়া। তো উনহে বাদ মে আখরি মে বহু ক্রোধিত ভি হুয়া আর বহু দুঃখি ভি হো গয়া, আর উনহে যা রহে থে। তো উসি সময় দেখা ঠাকুরজি আপনে নিত্যস্বর মে আকে লাড্ডু খা রহে হ্যায়। তো আবি ভি ও বিগ্রহ তো হ্যায় নেই, লেকিন যো বিগ্রহ কুছ দিন পহলে চোরি হো গয়া, ও বিগ্রহ মে আবি তক লাড্ডু। দূসরা দিন মুকুন্দ নে দর্শন করনে কে লিয়ে কি ও জব দূসরে প্রসাদ মাঙ্গা থা, বোলা ঠাকুরজি সব খা গয়া। দূসরে দিন মুকুন্দ ছুপ কে দেখা আর উনকো পূজা করনে কে লিয়ে দিয়া, উসে জব খা রহে থে উসি সময় মুকুন্দ আ গয়া, তো ও লড্ডু জর জেসে হো গয়া থা, জেসে বিগ্রহ হ্যায় ওইসে জর পত্থর জেসে হো গয়া। তো ও লড্ডু উনকে হাত মে তব সে থা, দর্শন দিয়া থা। আর এ কদম কে বৃক্ষ থে, তো কদম কে বৃক্ষ মে ক্যা হোতা হ্যায়, সাল মে এক সিজন হোতা হ্যায়, এক দো মহিনা ফুল হোতা হ্যায়, লেকিন উনকে এক তালাব থা কুণ্ড, উস কুণ্ড কে তীর পর এক কদম বৃক্ষ থা, হর দিন দো ফুল হোতা থা 365 দিন দো ফুল হোতা থা, উস ফুল কান মে লাগাতে থে ঠাকুর জি কো। তো ইসকে ইনকে রঘুনন্দন কে যে বিশেষতা হ্যায়, কৃষ্ণ সেবা কে নিষ্ঠা, কৃষ্ণ মহাপুরুষ স্বয়ং বতায়া কি কৃষ্ণ সেবা কে আলাবা ইনকা মন আর কহিঁ পে নেই হ্যায়। ইসকে বাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইনকে মহাপ্রভু কে মিলনে কে লিয়ে ক্যা উৎকণ্ঠা, প্রাপ্তি আপনি প্রাপ্তি লক্ষ্য বস্তু কে প্রাপ্ত করলে ক্যা ইনকে উৎকণ্ঠা। যাব শান্তিপুর মে যাকে মহাপ্রভু সে মিলা দিন রাত মহাপ্রভু সে এই বতাতে হ্যায়, রক্ষকের হাতে আমি কেমনে ছুটিব, কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলা চলে যাইব, দিন রাত এই বতাতে হ্যায়। কি যাব একই লতা বেটা থা গোবর্ধন মজুমদার, উনকি একই বেটা থে আর হিরণ্য মজুমদার কে বেচে থাই নেই, ইতনা বড় জমিদার হ্যায় ও ভি পাগল হো গয়া, মা বাপ ভি বহু চিন্তিত থে ক্যা করেগা, লেকিন উনকা মন তো সংসার মে হ্যায় নেই, শাদি দিলা দিয়া ফির ভি উনকা মন নেই হ্যায়। ইসকে বাদ উনকো দিখায়া কি কিতনা উৎকণ্ঠা, अपने लक्ष्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ ने किसी और देखा नहीं। इतना सुंदर स्त्री है, इतना धन है, माता पिता की इतना स्नेह है, सब ठुकरा के, सब कुछ ठुकरा के उन्होंने कैसे महापुरुष से मिलेंगे, कैसे महापुरुष को प्राप्त करेंगे, इसके लिए उन्हें हमेशा उतावला रहा। तो बार बार भागते थे, बार बार भागते थे, बिल्कुल ऐश्वर्य में मन नहीं। हम लोग ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त हुआ है, उसमें बिल्कुल मन नहीं है। तो जितना बार उनका प्रयास करने से फिर नित्यानंद प्रभु से मिले, पानीघाट में चिरादोदी का महोत्सव हुआ, तो उन्होंने बाद में दूसरे दिन चिरादोदी महोत्सव के बाद उनका प्रार्थना किया महान नित्यानंद प्रभु। तो बोले अजोग्य मई निवेदन करते करी भय चैतन्य देह गोसाई मरे हैया सदाय। देखिए इतना त्याग, इतना वैराग्य, फिर भी आप लोग को क्या मान रहा है, मैं अयोग्य हूं, मैं निवेदन करने के लिए डर रहा हूं, आप कृपा करके मेरे को चैतन्य को दे दीजिए। नित्यानंद से प्रार्थना कर रहे हैं, वो अयोग्य समझते हैं अपने को, योग्य नहीं हूं। हम लोग योग्य समझते हैं, हम लोग वृंदावन बैठे रहते हैं, बोले हाँ हम तो बहुत बढ़िया है, वृंदावन वृंदावन में बैठा हूं, सब बहुत खुश हुए, ऐसे नहीं। प्रेमेर स्वभाव एई प्रेमेर सम्बन्ध सेई माने कृष्ण मोर नाही प्रेमो गंध। यही स्वभाव, प्रेम की स्वभाव यही है, प्रेम की संबंध यही है। जो प्रेमी वो मानते हैं कि कृष्ण में मेरा प्रेम की गंध नहीं है, नहीं हम राधाकृष्ण से बहुत प्रेम है, ऐसे नहीं होता है। वो जितना प्रेम है वो दिन रात 24 घंटा सोचते हैं, फिर भी सोचते हैं कि कृष्ण में मेरा प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। यही प्रेम की लक्षण है, प्रेमेर स्वभाव यही प्रेमेर संबंध, प्रेम की स्वभाव ही ऐसे है कि वो मानेगा कि कृष्ण में मेरा प्रेम की गंध नहीं है। ये महाप्रभु आचरण करके देखा है आपने में, वो राधा भाव में थे, स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के भाव में थे, हमेशा विलाप करते थे, हमेशा विलाप करते थे। माधवेंद्र पुरीपाद इतना दिव्य स्थिति में थे, हमेशा रोते थे, वही दिनो दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदव लकश्य है, इसमें कहा मथुरा नाथ, कहा है प्राणनाथ, कहा मथुरा, कहा गया, कब मेरा दर्शन होगा, इसी प्रकार उतावला रहते हैं। यही प्रेम की स्वभाव है, यही प्रेम की स्वभाव है, यही प्रेम की स्वरूप है। वो मानेगा कि कृष्ण में मेरा प्रेम गंध नहीं है, और जो बोलेगा मैं तो प्रेमिक है, कृष्ण मेरा प्राणनाथ है, हमेशा मैं कृष्ण चिंतन करता हूं, मान लीजिए कि उसमें प्रेम नहीं है, वास्तविक नहीं है, वो ऊपरी भाव है। वास्तविक प्रेम की स्वभाव ऐसे है, ये महाप्रभु ने स्वयं वर्णन किया है। प्रेमेर स्वभाव यही प्रेमेर संबंध सेई माने कृष्ण मोर नाही प्रेम बंधन। इसलिए रघुनाथ दास इतना इतना भक्ति करने का उपयुक्त तो पात्र है, फिर भी वो बताते अजोग्य मई निवेदन करीते करीब हाय मोरे चैतन्य देह गोसाई होइया सदाय। मैं अयोग्य हूं, मैं निवेदन कर रहा डर रहा हूं, मैं निवेदन करने का योग्य नहीं हूं, आप कृपा करके मेरे को चैतन्य दे दीजिए। एक्चुअली एक जीव जब जान जाएगा कि हमारा क्या शक्ति है, सोचने का, विचार करने का, बोलने का, जो भी प्रवचन करने का, जो भी शक्ति है कृष्ण से आते हैं, कृष्ण शक्ति हटा देगा तो मोह टेढ़ा हो जाएगा, बात ही नहीं कर सकते तो प्रवचन क्या करेगा, कोई बोलेगा क्या। तो इसलिए हर जीव दीन है, कृष्ण शक्ति सब कुछ शक्ति है, कृष्ण शक्ति बिना है तार परिवर्तन, कृष्ण शक्ति के द्वारा सब कुछ होता है, सोच सकता है, बैठ सकता है, बोल सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, उनके बारे में सेवा कर सकते हैं, कृष्ण शक्ति नहीं तो कुछ नहीं करते। इसलिए हर जीव अपने को दीन मानते हैं। तो इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने बताया कि इसका जो देखो, इसका सारे भक्त लोग कृपा करके उन्होंने बताया कि देखो तुम लोग इनको कृपा करो, इनका इंद्र संबंध ऐश्वर्य है, फिर भी इनका मन विषय में नहीं है, चैतन्य में है, तो आप लोग कृपा करो अति जल्दी से जल्दी उनको चैतन्य मिल जाए। तो नित्यानंद प्रभु एक पद बताते हैं बहुत सुंदर, कृष्ण पाद पद्म गंध यही जने पाए ब्रह्मलोक आदि सुख तार नाही भाई। बताते हैं कृष्ण पांच चरण, कृष्ण ठाकुर जी के चरण कमल की गंध, पद्म पद्म की गंध एक बार मिल गया किसी को, ब्रह्मलोक आदि आदि सुख भी उनके मन में नहीं भाता है। इसलिए रघुनाथ की सामान्य ऐश्वर्य क्या भाएगा। इसके बाद कैसे कैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद दे दिया कि आप निश्चिंत तो हो जाओ, अपने भवने अचिरे अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। ये भक्ति हमको, ये आचार्य है आचरण करके देखा है हमको, भक्ति करने के लिए कितना प्रयास होना चाहिए। एक भक्त के साधु को अपने लक्ष्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास होना चाहिए ये दिखाया। फिर ऐसे नित्यानंद प्रभु गारंटी दे दिया कि अचिर में बहुत जल्दी निर्विघ्न से आप चैतन्य को प्राप्त हो जाओ, निश्चिंत हो, आप निश्चिंत होकर अपने घर चला जाओ। फिर जाके क्या किया, वो जाके घर में जाके चुपचाप बैठा नहीं रहा कि हमको तो प्राप्त हो जाएगा चैतन्य, नहीं, वो घर पर अंदर रहते थे घर में, घर पर वो प्रवेश नहीं किया, बाहर दूरमन उसके घर के अंदर से बाहर एक दूर घर से दूर ही उनके दुर्गा मंडप था, वहां पे रहकर रहते थे, अंदर प्रवेश ही नहीं किया। तो पिताजी माताजी अपनी पत्नी बहुत प्रयास किया अंदर ले जाने के लिए, गए ही नहीं, और दिन रात सोचते हैं कि मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊं, कैसे मैं पहुंचू महाप्रभु के पास, हमेशा प्रयास हमेशा प्रयास। इस ऊपर कैसे कैसे उन्होंने महाप्रभु के पास पहुंच गए, महाप्रभु ने बताया उनको बहुत कृपा किया, बोला कृष्ण की कृपा है आपको उद्धार कर दिया, और उनके पिताजी को बहुत बताया कि आपका पिताजी विषय विष्ठा की जो कीड़ा है वो प्रिय विषय को बहुत प्रिय करके मानते हैं, लेकिन विषय बहुत पीड़ा है। ऐसे किया महाप्रभु के पास में रहे, अपने महाप्रभु उनको गोविंद जी को बोला कि आप गोविंद को थोड़ा ध्यान दो, 12 दिन तक चला गया वो, 3 दिन तक केवल मार्ग में थोड़ा खाया था, वो बहुत दुबला हो गया, दुबला पतला हो गया, बहुत कमजोरी हो गया, इनको थोड़ा अच्छा खिला पिलाओ। केवल 5 दिन तक रह के, 5 दिन तक उन्होंने महाप्रभु का अधरामृत मिला वो खाए। इसके बाद सिंहद्वार में खड़ा रहे, वहां के मांग के खाते थे, एक जमींदार के बेटा है, कभी कुछ जानते कभी कार्य किया ही नहीं, कितना अच्छा से खाते पीते थे, उन्हें सब छोड़ छाड़ के भीख मांग के खा रहे थे। तो महाप्रभु को सुना और महाप्रभु ने बोला बहुत अच्छा है, बैरागी धर्म आचरण किया। एक शुद्ध भक्त वो भी जानते जी हमारा जो इष्ट है वो हमसे क्या चाहते हैं, वो सनातन भी ऐसे है, महाप्रभु जो चाहते तो वो महाप्रभु से पहले बोलने से पहले वो कर देते थे। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए कि बैरागी धर्म आचरण किया। तो बैरागी करिबे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाइए करे जीवन रक्षण, बैरागी होइया जेबा करे पर उपेक्षा, कार्य सिद्धि नहि कृष्ण करेन उपेक्षा। तो बैरागी होकर, बैरागी क्या कार्य है, केवल नाम संकीर्तन करना है, मांग के थोड़ा खा लेना है, जिसका घर में घर पर है गृहस्थ है वो अपने जो भी सदा मित्र मिले वो खाना है, केवल सदा नाम कीर्तन करना है। बैरागी होकर जो उसको दूसरे भरोसा करते हैं कृष्ण के अलावा, कृष्ण को छोड़कर दूसरे को भरोसा करता है बैरागी होकर, कृष्ण उसको क्या करता, उपेक्षा करता है, तू जा, तो मैं सबको पूछता हूं, तू मेरा भजन कर, दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहा है, दूसरा मेरे को पालन करेगा, दूसरा मेरे को खिलाएगा, उसको उपेक्षा कर देता है, जा, तेरा कृपा नहीं होगा, उपेक्षा कर देता है। तो इसी प्रकार बैरागी के धर्म है, ऐसे महापुरुष के पास रहा। फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक दिन स्वरूप दामोदर से, महाप्रभु से डायरेक्ट स्वरूप दामोदर बात, रघुनाथ बात नहीं करते थे, स्वरूप दामोदर या गोविंद के द्वारा बात करते थे। एक दिन स्वरूप दामोदर से निवेदन किया, देखिए महापुरुष के साथ रह रहे, सब खाना पीना सब छोड़ दिया, मांग के कभी खाते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसे रह रहा है और महापुरुष के पास अंतरंग स्वरूप के साथ अंतरंग सेवा कर रहा है, फिर भी बोल रहा है, स्वरूप से पूछ रहा है, महापुरुष से पूछो किस लिए मेरे को घर छुराया, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं नहीं जान पा रहा हूं, मेरे को पता नहीं चल रहा मेरा कर्तव्य क्या है। देखिए एक साधक, एक उन्नत उन्नतम साधक की कैसे साधक के भाव होना चाहिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं मेरा कर्तव्य क्या है, कृपा करके प्रभु से प्रभु से सर्व दोनों से प्रार्थना करें, आप थोड़ा कृपक लगे बताइए प्रभु अपने मुंह से बताए मेरा कर्तव्य क्या है। तब ऐसे जब बताया महापुरुष जी ने रघुनाथ जी को बताया, बोला तेरा उपदेष्टा करके मैं स्वरूप दामोदर को रखा हूं, आप साध्य साधन जो भी पूछना उनसे पूछो। अरे वो मेरे से अच्छा जानता है स्वरूप दामोदर, मेरे से उसको अच्छा पाता है, उनसे पूछो। फिर भी तथापि हमारा आज्ञा श्रद्धा जो दी है हमारे वाक्य तुम्हें करो ही निश्चय। महाप्रभु ने बताया ठीक है, फिर भी मेरे बात आपको सुनना चाहते हो तो मेरा बात में आप निश्चय संकल्प हो। ऐसे तैसे कोई ठाकुर जी ऐसे बात बता दिया और दो दिन बाद तो मानेगा नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे। तथापि हमारा आज्ञा इसके अलावा मेरा बातों में आपका श्रद्धा है तो मेरा बात में आप निश्चय कर लो। ठाकुर जी ऐसे कोई बात बताएंगे नहीं कि वो आज बता दिए काल छोड़ देंगे, नहीं, बोला निश्चित कर लो, संकल्प कर लो। संकल्प ही अपने लक्ष्य वस्तु को प्राप्त करना, अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना संकल्प ही मूल ये है, जड़ है। जो संकल्प कर लिया, संकल्प नहीं तोड़ा, उसको सिद्धि प्राप्ति लक्ष्य वस्तु प्राप्ति निश्चित है। संकल्प साधन का बहुत बड़ा बल है, वो पतन से गिराएगा आपको। आप संकल्प के मैं ऐसे ये जब सोलह माला इतना माला जप करने के बिना हम खाएंगे नहीं, तो आपको कोई लोभ से ये से बहुत सारे, हम बात नहीं करेंगे, हम फोन अटेंड नहीं करेंगे, हम कुछ देखेंगे नहीं, तो इसके लिए आपको बचाएगा, आपत आ जाएगा, आपको गिराने वाले चीज आएगा, लेकिन आपको गिरा नहीं सकते हैं। आपका संकल्प है हरिदास ठाकुर, उनका संकल्प था कि मेरा इतना नाम जप करने इसके बाद ही आपके आपने मिल सकता हूं, वो संकल्प उनको बचा दिया। तो संकल्प बहुत जरूरी है। तो महाप्रभु ने बताया पहले निश्चय करो, संकल्प करो। उन्होंने बता दिया चार लाइन में, ग्राम का बहुत कठिन है पालन करना, बहुत कठिन। तो फिर महाप्रभु ग्राम कथा ना सुनी में, ग्राम कथा ना कही भालो ना खाइबे और भालो ना पड़ी अमानी मानो दे सदा कृष्ण नाम लवे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। तो ग्राम कथा कृष्ण कथा के अलावा इंद्रिय तुष्टि का दूसरे दूसरे की ये तो दूसरे निंदा तक करना ही नहीं, इसके अलावा भी जो सादा चर्चा है सामाजिक चर्चा है ये भी नहीं करना है। कौन कैसे है, कौन क्या हुआ, किसका शादी हुआ, किसके बच्चे हुआ, क्या है, ये सब बात करना ही नहीं है, इधर उधर की बात ग्राम कथा। तो और इसके बाद टाइम हो गया छोड़ दो हाँ? तो इसके बाद ये बताया ग्राम कथा नहीं सुनना है, भलो ना खाना अच्छा नहीं है, अच्छा पहनना नहीं है, और अमानी होना है, मान देना है, मान की हम प्रतिष्ठा है, हमारा नाम हो जाए, ये हो जाए, ये अमानी इसको प्राप्त करने के लिए, और दूसरे को मान देना है, इतने ना तो पिछड़ने से नहीं, ये अर्थ जैसे है। और ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस में करना है, ये चार लाइन बताया, लेकिन चार लाइन पालन करना इतना आसान है नहीं, नाक से दम निकल जाएगा इसको पालन करेंगे तो। अच्छा खाना नहीं, अच्छा पहनना नहीं, दूसरी बात नहीं करना है, सदा कृष्ण नाम करना है, सब कुछ आ गया इसमें। ठाकुर जी बहुत बड़ा एक विशाल ग्रंथ नहीं बताते हैं, ये चार लाइन फॉलो करेगा उसका जीवन सिद्धि निश्चित है, 101% गारंटी, महाप्रभु के द्वारा बताया हुआ वचन है, ज्यादा नहीं बताया, चार लाइन बताया। इसके बाद उनका वैराग्य ऐसे हुआ, ये छोड़ दिया सत्र, वो सिंह दौर में मांगना छोड़ दिया, छत्र में जाके मांगने लगा, वो भी छोड़ दिया। महाप्रभु बाद में बताया कि ये सिंह दौर में खड़ा होना वेश्या की वृत्ति है, कि ये आएगा ये देगा, वो ये नहीं दिया वो देगा, तो बोले वेश्या की वृत्ति है, ये छोड़ दिया, अच्छा हुआ। फिर छत्र में खाया, छत्र में भी छोड़ दिया, बोले ये भी मैं ज्यादा भोग कर रहा हूं, देखिए ये भी भोग कर रहा हूं। तो उसने जो दो तीन दिन हो जाने के बाद जो सड़ा हुआ राइस है फेंक देता है, वो गाय भी नहीं खा सकते, उसको धो धोकर, जगन्नाथपुरी का राइस जो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा अंदर हार्ड होता है, तो जितना जल्दी सड़ते नहीं, उसको धो धो के नमक देकर उसको खाते हैं रात को। और आपने को क्या वो ये करते हैं कि तो उन्होंने अब उनके जो वैराग्य है, उनका नियम है पाषाण की लकीर खींचा जैसे है, पान में थर में जैसे लकीर खींचने से इतना ज्यादा मिटता नहीं, उनका नियम इतना पक्का था, उनका जो संकल्प था ये भजन करना है, इतना दंडवत करना है, केवल साथ पीना है। वृंदावन आया अन्न जल त्याग के लिए अनन्य कथन। वृंदावन जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए तो उन्हें पानी और चावल रोटी बाजरे की रोटी कोई भी सूजी कुछ सब कुछ छोड़ दिया, केवल साथ पी के रहा। अन्न और पानी भी नहीं पीता था, अन्न जल, अन्न कोई ग्रहण फल ये जो भी हुई कुछ सब कुछ तक दिया, और पानी पानी भी तक दिया, केवल मट्ठा पीना है बस, केवल मट्ठा पीना है। फिर भी अपने को कोस रहे हैं कि मैंने अपने भोगों के लिए अपने भोगों के लिए मेरा समय बिताया। सिरा काथा कानी बिना ना पड़े वसन, सावधानी कोई प्रूर आज्ञार पालन। फाटा फूटा कपड़े पहनते थे और महापुरुष की बातों को बहुत सावधानी से पालन किया। इसलिए बंगाल में कोई भोजन होता है बोला साधु सावधान, हमेशा साधु सावधान रहना है। सावधान नहीं रहा एक पल के लिए गया, साधु सावधान रहना हमेशा। आपने जो संकल्प महापुरुष चार लाइन बताया, ये चार लाइन को सावधान से पालन किया, बहुत सतर्क के साथ। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पड़िबे, अमानी मानद है सदा कृष्ण नाम लवे। चार लाइन को बहुत सावधानी से पालन किया। तो वैराग्यर कथा अति अद्भुत कथन, आजन्म ना दिलजिब्बाय रसेर स्पर्शन। उनकी वैराग्य की कथा अद्भुत कथन है, अद्भुत। आजन्म अपने जीव में कोई रस का आस्वादन नहीं किया। तो इस रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा क्या बताए, और ऐसे तो साधारण जीव कर ही नहीं सकते हैं। हम उसे प्रार्थना कर सकते कि हमारा कृष्ण प्रसाद की प्रति आकर्षित थोड़ा रुचि हो, दूसरे वस्तु खाने का रुचि इतना जान आना हो, भगवान में हमारा थोड़ा मति लहे, नाम जप करने के लिए दूसरे निंदा करना, दूसरे को ये करना, इसमें हमारा मन ना लगे, ठाकुर जी में कैसे थोड़ा वो समय है लगे और कैसे ज्यादा से ज्यादा चिंतन कर पाऊं, इतना करके हम सब आचार्य से प्रार्थना कर, एक 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 भाव है, कैसे कैसे विष्णु प्रिया देवी किए है, बहुत कठोरता के साथ लक्ष्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। जय विष्णुप्रिया देवी पुंडरीक विद्यानिधि रघुनंदन ठाकुर रघुनाथ गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जय श्री प्रभुपाद के गौर भक्तवृंद के हरे कृष्णा।